जय गुरु जी। गुरु जी को बहुत बहुत प्रणाम। मेरे गुरु जी मालिक आपके चरणों का स्पर्श हो, मेरे गुरु जी की संगत को बहुत पर प्रणाम हो, और गुरु जी का शुक्राना जो मुझे आज मौका दिया उनका गुणगान करने के लिए और उनकी वडियाई करने के लिए। खैर, हमारे जितना मर्जी हम कहें, हम तो वडियाई नहीं कर सकते पूरी, उनका तो कोई अंत ही नहीं है। इतना उन्होंने इतना बख्शा है हमें, इतनी हमें कृपा हम पर करी है कि उसके तो हम कहीं नहीं करना तो बहुत छोटा सा लफ्ज है। तो फिर भी अपने ह्यूमन फॉर्म में इतना हम कर सकते हैं। आई ट्राई एंड से समथिंग सो दैट हमारे और जो संगत है वो इंस्पायर हो जाए, या उनको कॉन्फिडेंस हो जाए, या उनकी फेथ बन जाए गुरु जी के, और गुरु जी की जब हम जो हमारा एक्सपीरियंस है सुनकर अच्छा लगेगा। तो गुरु जी को, गुरु जी के इस जन्म में तो 1995 में मेरा पहले मैंने गुरु जी के दर्शन किए, बट आई एम वेरी श्योर कि गुरु जी के मेरे कॉन्टेक्ट बहुत बहुत कनेक्शन बहुत अर्लियर जन्मों से है, क्योंकि गुरु जी ने मुझे ढूंढा। मैं तो खैर ढूंढ रही थी, मैं कम से कम 5-6 गुरु उनके पहले जिनके गई और नहीं टिक सकी, गई और नहीं मजा आया, गई और नहीं आगे बढ़ पाई गुरु जी के पास जब, और गुरु जी ने मुझे खुद बुलाया। आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट गुरु जी, और आज तक मुझे कौन लेके गया, किसने मुझे बुलाया, किसने मुझे संदेशा दिया, मुझे कुछ याद नहीं है। So I say, Guruji directly himself called me to his sharan and what shall I say, help me out? No, मुझे पूरा अपने हाथों पे उठा लिया। 1995 में मैं, just give me, let me give a small introduction. I was chief commissioner income tax that time and I was just newly promoted. मैं दिल्ली में थी, on promotion मुझे जयपुर भेजा गया। So जयपुर means whole of Rajasthan. तो जब मैं वहां गई तो मुझे कुछ थोड़ी सी तकलीफ होने लगी, पर मुझे एहसास नहीं हुआ। मुझे लगा कि मैं फैमिली से अकेली रह रही हूँ, इसलिए मुझे भूख नहीं लग रही, मुझे सांस हो रहा है, स्मॉल प्रॉब्लम, आई डिडंट बॉदर। तो जब डॉक्टर को यूं दिखा दिया, बिकॉज शाम को समय होता था तो शायद दिल्ली में ऐसी प्रॉब्लम होती मैं दिखाती भी ना, इट्स वेरी स्मॉल अकॉर्डिंग टू मी, या गुरु जी ने मुझे इतनी तकलीफ नहीं होने दी, ये यूं कही है। तो जब मैं वहां डॉक्टर को दिखाया तो ही वाज वेरी वेरी कंसर्न, बहुत घबरा गए, बोले कि एक्सरे करवा के तुम्हें दिखाता हूँ। एक्सरे कराई, चेस्ट एक्सरे कराई, तो बोलने लगे प्लीज तुम जाओ, दिल्ली चले जाओ, एम्स में चले जाओ। मैंने उनका कोई खास ख्याल नहीं किया, मैंने सोचा कि जयपुर के शहर में शायद ही वॉन्ट्स यू बी हेल्पफुल टू अ VIP, तो मुझे कह दिया ये, तो मैं अपना काम वाम करती रही। तो एक दिन मेरे ऑफिस आ गए, कहेंगे मैडम प्लीज आप जाइए, इट्स वेरी सीरियस, आप वहां जाके दिखाइए। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को फोन किया, वो दिल्ली में थे, उनको फोन किया, अपॉइंटमेंट ले लो, एंड मैं आ गई, एंड आई जस्ट पिक्ड अप माय हाउस कीज, ऑफिस कीज मेरे पास थी, बस आई डिडंट अपना सामान नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, बिकॉज आई थॉट दिखा के आ जाऊंगी। तो व्हेन आई केम हियर आई वाज एडमिटेड एंड आई वाज टोल्ड वेरियस थिंग्स, बहुत ये बीमारी है, वो बीमारी है, किसी को रिस्पॉन्ड नहीं किया, पहले टीबी कहा, फिर कैंसर कहा, फिर कई कुछ कहा, बट दे कुड नॉट कम टू अ कंक्लूजन। एट दैट स्टेज मुझे मेरे चेयरमैन ने दिल्ली ट्रांसफर कर दिया फ्रॉम जयपुर, सो दैट आई कुड कीप गोइंग टू हॉस्पिटल एंड विदाउट लीव। तो फिर मेरे किसी कोई, बाद में मुझे नाम पता है, कोई मिस्टर मनोहर लाल है, उन्होंने मुझे आके कहा कि हमारे गुरु जी के पास आओ, आपको ठीक कर देंगे। मैं सामने आए, मैं शायद उनको नहीं पहचान पाऊंगी। बाद में मैंने किसी से पूछा उनका क्या नाम था, रणबीर अंकल से मैंने पूछा, तो दैट्स व्हाई आई नो हिज नेम। खैर, गुरु जी के पास गए, तब गुरु जी ग्रेटर कैलाश में होते थे, एस ब्लॉक बेसमेंट में होते थे। गुरु जी ने मुझे कहा पान के पत्ते ले आओ और एक लोटा लिया, उसमें अपने ब्लेस करके जल भी दे दिया और पान के पत्ते से ट्रीटमेंट जैसे करते थे वो कर दिया। वो मुझे कहा कि ठीक हो जाओगे। नेक्स्ट डे फिर शायद बुलाया, एक बार फिर बुलाया बस, और मैंने कहा ठीक हो जाओगे, मैं भी आ गई। बट मुझे ये नहीं था कि ये भगवान है, ये मुझे ठीक कर रहे हैं, मैं ठीक हो जाऊंगी। मुझे ये था कि एक महापुरुष है, इन्होंने मुझे ब्लेस कर दिया, तो चलो फर्क हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। बट आई नेवर नेवर रियली बिलीव कि ये मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। मुझे उस समय उन दिनों यही होता था कि मेरी बेटी एमबीए करके आई थी, जॉब अभी भी लगा था, उसको हम शादी की बात कर रहे थे, तो मुझे लगा कि अगर मुझे मेरे डिपार्टमेंट के और मेरे मिनिस्ट्री में कहते हैं कि तुम यूएस चली जाओ, वहां जाकर ट्रीटमेंट लेके आ जाओ, यहाँ तो खराब हो जाएगा तुम्हारा केस। तो मुझे लगता था मैं चली गई, कुछ हो गया, मेरी बेटी की शादी का सारा काम रह जाएगा और ये बेचारी रुल जाएगी। तो मैं हमेशा ये कहती थी कि मैं इसकी शादी कर लूं, नेक्स्ट डे आई एम विलिंग टू गो, मुझे ले जाना जहां ले जाना। इस चक्कर में मैं गुरु जी के पास आई, गुरु जी मुझे बताओ कि मेरी लाइफ कितनी है, सॉरी। लेकिन गुरु जी ने कहा तो ठीक हो जाएगी, ठीक है, आई वेंट अराउंड, ठीक हो जाऊंगी। इट टुक सम टाइम, बट से अबाउट थ्री तीन चार महीने के बाद आई स्टार्टेड इम्प्रूविंग आफ्टर लॉट ऑफ दिस हियर देयर बॉम्बे ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग वी डिड एंड देन वी वेंट टू आई फीलिंग बेटर। सो देन माय चेयरमैन ट्रांसफर मी टू पूना, अब तुम ठीक हो रही हो तुम पूना चले जाओ। तो घर में थोड़ी नाराजगी भी हो गई, अभी ठीक तो हुई नहीं और पूना चली जाएगी, फिर घर का खाना नहीं मिलेगा, तेल होगी, मिर्ची होगी, कैसे होगी। और पूना अगेन मीन्स मेंट होल ऑफ महाराष्ट्र माइनस बॉम्बे, तो बड़ी ट्रैवलिंग, बड़ी टूरिंग यहाँ। तो मुझे अंकल, मेरे अंकल भी इसी डिपार्टमेंट में थे, तो मुझे कहने लगे तू छोड़ जॉब छोड़ दे, अब काफी सीनियर तो हो गई है, तो और कोई खास प्रमोशन हो नहीं, यू बेटर गिव अप, यू कांट रुइन योर हेल्थ। पर मेरे को गुरु जी ने कोई अंदर से कोई कॉन्फिडेंस दिया हुआ था, मैंने कहा नहीं मैं छोड़ूंगी नहीं, अगर मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं वापस आ जाऊंगी, आई विल गिव अप देन, बट अभी इमिनिशियली मैं नहीं छोड़ूंगी। तो आई वेंट, महीना भर मुझे लगा सेटल होने में, आफ्टर दैट आई स्टार्टेड एंजॉइंग माई वर्क, मेरा बहुत काम अच्छा होने लगा एंड आई स्टार्टेड इम्प्रूविंग। मैं भूल भी गई कि मुझे कुछ हुआ था, मैं भूल भी गई कि गुरु जी ने मेरा कुछ किया था। आई कम्प्लीटली फॉरगॉट, आई वेंट अपॉन डूइंग माई वर्क और बड़ा अच्छा बढ़िया काम होता रहा, काफी यश कमाया, लोग भी खुश थे, मैं भी बहुत अपने काम से खुश थी। उस दौरान मैंने महाराष्ट्र में 5 ज्योतिर्लिंग हैं, 5 के दर्शन कर लिए मेरे काम के दौरान में, एंड आई वाज वेरी हैप्पी। दैट वाज 95, 96, 97, अर्ली 98 मेरी प्रमोशन हो गई एज मेंबर ऑफ द बोर्ड और मैं दिल्ली आई। अब मुझे तो ख्याल भी नहीं था कि गुरु जी यहाँ हैं, या गुरु जी मेरे ही गुरु जी हैं, या कोई उस समय महापुरुष थे जिन्होंने मुझे ब्लेस किया। मैं अपना काम कर रही थी और एक दिन एक लड़की आई मेरे पास, एक लेडी आई और उसने कहा कि मैम मेरे हमारे घर में गुरु जी आ रहे, मैं यूपीएससी में हूँ, पहले मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में डेप्यूटेशन पे हूँ, हमारे घर में गुरु जी हमारे आ रहे हैं, क्या आप आओगे? मैंने कहा, मैंने स्वभाव की कह दी हाँ जरूर आऊंगी, क्योंकि मुझे लगा कोई महापुरुष है ब्लेसिंग लेने में अच्छा ही अच्छा है। बट आई फॉरगॉट टोटली, आई थिंक इट वाज ऑन संडे, और मैं बिल्कुल भूल गई। जैसे 9 बजे, आई थिंक शी टोल्ड मी 6 to 8 और समथिंग, 9 बजे, तो मैंने एकदम याद आ गया कि मुझे तो जाना चाहिए था, तो मैंने उसको फोन कर दिया कि सॉरी मैं तो भूल ही गई, तो नेक्स्ट टाइम आएंगे तो मैं जरूर आऊंगी। तो उसने कहा कि रोज ऐसे गुरु जी घरों में नहीं आते, हम जाएंगे। मैंने कहा अच्छा तुम जाओ तो मुझे ले जाना। सो दैट इज हाउ फिर मैं 98 में, दैट वॉज फेब्रुवरी या मार्च 98, मैं गई एंड व्हेन आई सॉ गुरु जी, मेरी इतनी खुशी हो गई, मैं इतनी खुश हो गई, मुझे लगा ये हमारे, ये मेरे मास्टर हैं, ये मेरे परम पिता हैं, यही मेरे सब कुछ हैं, क्योंकि इन्होंने मुझे ढूंढवाया दूसरी बार। पहली बार मुझे ढूंढवाया, मुझे ठीक कर दिया, और दूसरी बार फिर मुझे अंदाज भी नहीं था कि गुरु जी कहाँ है, मुझे लगा कि महापुरुष आए हैं और चले जाएंगे वापस जहां से आए हैं। आई डिडंट नो के दिल्ली में बस जाएंगे और कहाँ होंगे, एम्पायर स्टेट में थे। फिर उन्होंने मुझे कई चीजें पूछी, बताई, जो आई वुड हैव अगेन फॉरगॉटन। जैसे कि उन्होंने मेरे हस्बैंड के लिए कहा था, वो मेरे हस्बैंड पहले एयरफोर्स में होते थे, उसके बाद उन्होंने आईएएस एग्जाम दिया, तो वी नन ऑफ अस, इवन हमें याद नहीं रहता था कि ये एयर फोर्स में थे, बिकॉज इट वाज अ फॉरगॉटन थिंग. तो गुरुजी ने कहा वो फौजी का क्या हाल है. आई वाज सरप्राइज के ऐसे पूछ चुके हैं गुरुजी ने, याद है फौजी का क्या हाल है. देन मेरे बेटे को कहा था MBA करा दें. हम लोग अपने थोड़ा पढ़ लें ना, तो थोड़ा समझते हैं कि हम बहुत कुछ जानते हैं. हमने कहा कि ए, संत महात्मा है, इनको क्या फर्क पड़ता है, इनको क्या पता MBA. तो हमने उसको CA के आर्टिकल्स कराने के लिए ज्वाइन करवा दिया दिल्ली में ही. अब गुरुजी पीछे, गुरुजी तो पता है मैंने उसको MBA करानी है. तो जैसे मैं पूना गई अपने स्टार्टिंग, वहां जब मेरी ट्रांसफर हुई, तो मेरे गेस्ट हाउस के ऑपोजिट ही एक इंस्टीट्यूट थी जो एंट्रेंस एग्जाम्स MBA एग्जाम्स के लिए तैयारी करवाते थे. तो क्योंकि उनको पता लगा कि मैं यहाँ आई हुई हूँ पूना में, तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि हमारे यहाँ जो रिजल्ट्स निकले हैं कई टॉपर्स को प्राइजेस देनी है, तो वी वुड लाइक यू टू डिस्ट्रीब्यूट द प्राइज. मैंने हाँ कर दी. तो क्योंकि मैंने प्राइज डिस्ट्रीब्यूट की, थोड़ी जानकारी हो गई, तो मुझे लगा कि अच्छी इंस्टीट्यूट है. तो मैंने अपने बेटे को कहा कि देखो यहाँ इंस्टीट्यूट है, एंट्रेंस के एग्जाम के लिए तैयारी करवाती है, अगर तुम चाहो तो तुम MBA कर सकते हो, यू कैन ट्राई एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हो. वुड यू लाइक टू चेंज, कि CA करना चाहोगे कि MBA. वो भागा वहां से, कहते मैं तो MBA करूंगा, तो लेट मी टेक द चांस. वो आ गया, तो उसने वो इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर ली और एंट्रेंस टू MBA के लिए तैयारी करने लगा. मैं ऑफिस चली जाती थी सुबह, वो अपनी क्लासेस चला जाता था, दिन में पढ़ता रहता था, मैं ऑफिस शाम को आ जाती थी, वो भी अपने शाम को आके पढ़ लेता था. ऐसे हमारा चला. एंड देन उसने एंट्रेंस के एग्जाम दिए, ही वाज सिलेक्टेड और उसको एडमिशन मिल गई इन पूना इटसेल्फ. तो अल्टीमेटली गुरु जी का कहा वो हुआ, लेकिन हमको, हम जो नालायक लोग, हमने उसका बिल्कुल ख्याल नहीं किया कि सारा पीछे कौन कर रहा है, गुरु जी ही कर रहे थे. गुरु जी ने वो रास्ता बनाया कि मैं वहां गई, वहां उसको ट्रेनिंग क्लास ज्वाइन करवाई, और अगर वो मुझे ना बुलाते एग्जाम प्राइजेस के लिए, तो मैं ना जानती, मैं तो अपना काम गेस्ट हाउस से निकली, ऑफिस गई, ऑफिस से वहां आई, एंड नथिंग मोर देन दैट, आई वुड, मैं तो कहीं आसपास देखती ही नहीं. इस तरीके से उसकी MBA हुई. तो जब मैं वापस 98 में आई, तो गुरु जी ने पूछा मुंडे की MBA हो गई है. मैं कहता गुरु जी बस लास्ट 2 महीने रह गए, बस अब हो जाएगी, आपकी कृपा से हो जाएगी. सो दिस वे गुरु जी वेंट ऑन डूइंग, वो अपना काम करते रहे और हमें पता भी नहीं चला. ऐसे है, दिस इज ऑल द मोर प्रूफ कि एक्चुअली वो हमारे फादर हैं, हमारे भगवान हैं, हमारे मालिक हैं. क्योंकि और कोई इतनी चिंता आपके लिए नहीं कर सकता, आप खुद नहीं चिंता कर रहे, आप खुद नहीं तैयारी कर रहे हैं, और वो आपके सब कुछ कर रहे हैं. ही इज बॉदर एडमिशन उसको कैसे दिलानी है, उसको क्या करना है, उसको पास करवाना है, ऑल दैट ही डिड. एंड माय सन फिनिश्ड हिज MBA एंड केम हियर. वो दिल्ली आ गया, उसकी जॉब शायद लखनऊ वगैरह UP में लग गई. बट मैंने गुरु जी ने ये बताया तो आई वॉज रियली अमेज्ड. मैंने कहा गुरु जी तो सब जानते हैं. अच्छा, बस तब से फिर इतना अच्छा लगा. वो रोज हमने शाम को, वो जिसने आंटी ने मुझे बुलाया था पहले, वो पास ही रहती थी, वो उसका हस्बैंड भी IAS में था दोनों, और हम तीन, हम लोग हर शाम को जैसे ऑफिस से घर पहुंचते अंदाजन टाइम बता देते कि कितने बजे पहुंच गए हैं. जैसे तीनों पहुंच जाते हम फोन करते एक दूसरे को और हम मंदिर आ जाते. आके गुरु जी के पास बैठना, चाय प्रसाद लेना, लंगर लेना, गुरु जी शब्द सुनने और क्या क्या ऐश कराते थे गुरु जी. जब भी कभी चाय प्रसाद पीते पीते मुझे चाय दे दी कि ले आशा आंटी अब तू चाय पी ले. ये कभी सब जाने लगे, आ गया लेने लगे, तो अपना स्वरूप दे दिया, ले आंटी तेरे को लिख के दे दू, ऊपर गोल्डन से लिख दिया, आशा फैमिली फुल ब्लेसिंग होल लाइफ. ऐसे ऐसे से करके इतना इतना हमें सुख मिलता था, इतनी हमें खुशी मिलती थी कि वी नेवर थॉट कि हम कभी गुरु जी का पल्ला छोड़ेंगे, कि हम इनको कहीं ट्रांसफर हो जाए, जो मर्जी हो जाए, हम तो इधर ही रहे. इतना हो जाता था. और हर रोज विदाउट फेल, हमारा कोई और कोई सोच ही नहीं थी, कहीं जाना ही नहीं होता था. जब कहीं गुरु जी भी कहीं शादी कहीं इनवाइट होते थे, हम सबको साथ ले जाते थे. और गुरु जी एक एक चीज का ख्याल रखते थे. आई रिमेम्बर एक बार गुरु जी कहीं ले गए हमको, आई डोंट रिमेम्बर किसी के इनॉग्रेशन थी क्या, काफी दूर था, और क्योंकि हमारी ऑफिस कार होती है, आई एम नॉट वेरी फेमिलियर कि ये कौन सा एरिया है, कौन सी रोड है, बस गाड़ी वो ड्राइवर ले गया, हम चले गए। तो वो काफी दूर था, तो जब वहां से वापस आए तो हमारे जूनियर ऑफिसर, वो भी गुरु जी के डिवोटी थे, उन्होंने मेरा अरेंज कर रखा था वापस घर जाने का। गुरु जी ने पूछा मेरे को कि आंटी कैसे जाओगे घर, कोई अरेंजमेंट है? मैंने कहा हाँ गुरु जी। सो ही वॉज कंसर्न, हम कितने लोग थे, लेकिन ही वॉज बॉदर्ड कि ये अकेली रात को 12 थे या 1 था या 1:30, व्हाट एवर टाइम इट वॉज, काफी देर हो गई थी। ही वॉज कंसर्न कि ये अकेली कैसे जाएगी। आई वॉज स्टेइंग अलोन, अंकल की पोस्टिंग पुणे थी पर मेरी दिल्ली हो गई थी, मैं अकेली रह रही थी। तो इनको बड़े कंसर्न होते थे कि कैसे आओगी कैसे जाओगी, लाइक एग्जैक्टली लाइक अ फादर। नोबडी एल्स विल बॉदर सो मच अबाउट योर वेयर अबाउट्स, अबाउट योर वेलफेयर, जितना गुरु जी करते थे। इवन छोटी छोटी बातों में वो केयर करते थे बड़े। हमें इतनी मौज करवाते थे कि हमने कभी कुछ मांगने को सोचा ही नहीं, कभी ख्याल भी नहीं आया कि हमें कुछ चाहिए, बिकॉज वी हैड एवरीथिंग, जो चाहिए था, खुशियां थी, खाना पीना, चैन सुनना, अपना भजन सुनते रहना, गुरु जी की वाणी सुनते रहना, गुरु जी के चरण दबाने रहना, गुरु जी के पास रहना, मेन थिंग वाज गुरु जी के पास रहना। इतनी खुशी थी कि बिना थॉट हमें कुछ चाहिए, तो हमने कभी कुछ मांगा ही नहीं था। तो बाद में बातें लगी कि मंगो नहीं मनो, हमने कभी मांगा ही नहीं था, शायद जरूरत भी नहीं पड़ी थी, वी नेवर नीडेड एनीथिंग। तो अच्छा, फिर वो मेरा रिटायरमेंट का टाइम हुआ, अंकल जी का रिटायरमेंट का टाइम हुआ, तो मेरी रिटायरमेंट के टाइम मुझे अपने मिनिस्ट्री में ही एक और पोस्ट में सिलेक्शन हो गई, उसमें 2 साल मुझे और दे दिए उन्होंने। तो इन दैट अगेन आई वॉज पोस्टेड टू बॉम्बे। ठीक है, मैं बॉम्बे चले गई, अंकल वापस रिटायर हो गए, दिल्ली आ गए अपने घर में। दिल्ली आके फिर बोले मुझे PhD करनी है, फिर पुणे गए, हायर किया जगह, रेंट पे लिया। बट वॉट हैपेंड वॉज, अंकल वो बीमार हो गए। अब मैं बात बताऊं, हमें तो बाद में पता लगा अंकल बीमार हो गए 2001, लेकिन गुरु जी को 1999 में ही पता था कि ये मेरा भगत बीमार होना है, इसका मैंने कल्याण करना है। और इस बात का मैं एहसास मच लेटर हुआ। क्या हुआ, आई थिंक 1999 में गुरु जी मुझे कहने लगे, अशांति मैं तेरे घर आ रही हूँ। मैं तो थोड़ी घबरा भी गई, मैं तो भी घर सेट भी नहीं किया, ना मेरे पास कोई म्यूजिक सिस्टम है, ना मेरे पास कोई CD है, ना मेरे पास कोई कैसेट है, कैसे गुरबानी बजाऊंगी, छोटा मोटा फर्नीचर है तो, एंड आई एम अलोन, मेरे पास कोई हेल्पर एक्सेप्ट क्वार्टर में 2 लड़कियां हैं, देयर इज नोबडी एल्स। तो खैर मैंने गुरु जी से नहीं पूछा कि गुरु जी आप क्यों आना चाहते हो, ना मैंने पूछा कि, ना मेरे मन में आया कि गुरु जी को मैंने कहा भी, जब गुरु जी आना चाहते हैं ठीक है। तो गुरु जी आए, मेरे जूनियर ऑफिसर्स ने, संगत ने, सब ने मिलकर अरेंजमेंट कर लिया, मेड इट क्वाइट कंफर्टेबल फॉर अस ऑल। कोई म्यूजिक सिस्टम ले आया, कोई बानी के ये शब्द ले आया, कोई एवरीथिंग दे दिया, ये सब अरेंजमेंट हो गया। एंड वी वेलकम गुरु जी, बहुत खुशी से हुआ, सब अच्छा हो गया, अंकल भी पुणे से आ गए, बेटा भी आ गया। तो गुरु जी आए, गुरु जी ने सबको ब्लेस किया, लेकिन गुरु जी ने हमें एक छोटा सा हिंट भी नहीं दिया कि अंकल को कोई प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, हमने कहा गुरु जी आए हैं, बहुत अच्छी बात है, गुरु जी ने ब्लेस किया, दिस इज वन थिंग। सेकंड, गुरु जी ने क्या किया, उस घर में जब मुझे अकोमोडेशन वो मिली, सरकारी अकोमोडेशन थी जब मिली, दैट वॉज वेरी वेरी सॉट आफ्टर अकोमोडेशन, सब लोग उनको, सबको चाहिए वो, एवरीबडी वॉन्टेड अकोमोडेशन, वो मुझे मिली। तो मेरे एक जूनियर ने कहा, मैम मैं एक वास्तु वाले को ले आया हूँ, मैं तो वास्तु वगैरह ये सब मानती नहीं, पर वो ले आया है तो ठीक है, अब उसका निरादर नहीं करना, अच्छा भाई देख लो। तो उसने मुझे कहा एक रूम बताया, मास्टर बेडरूम में अटैच बाथरूम वो आपने यूज नहीं करना, मास्टर बेडरूम में आप नहीं सोना, और खास करके हेड ऑफ द फैमिली को रूम नहीं यूज करना। तो जो हमने स्टडी बनाई थी वो हमने अंकल को बोल दिया कि आप यहीं से दी करो, हम लोग यहीं सोया करेंगे, वी वॉन्ट गो टू द मास्टर बेडरूम। बस दैट वॉज, मैंने कहा कि इट इज नॉट गुड फॉर हेड ऑफ फैमिली लाइफ। तो हमने बोला उपाय क्या, पर उपाय क्या, वो रूम मत यूज करो, ठीक है। तो वी वेंट आउट, अब गुरु जी को तो पता था ये कि दिस हाउस इज नॉट गुड फॉर दिस पीपल। तो हमारा इमीडिएट नेक्स्ट डोर नेबर था, मेरे बैचमेट ही थे वो, ही वॉज चेयरमैन ऑफ द कस्टम्स. तो वो आई ऑल्सो डिडंट नो कि वो गुरुजी के डिवोटी है. जैसे हम आए तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा मोहिले मैं तो मेरे नेक्स्ट नेबर आ रही हूँ तो सब ठीक है यहाँ, अच्छा लगेगा? हाँ हाँ बढ़िया लगेगा. मैं आई तो वो एक मिठाई का डब्बा, एक क्वार्टर, आधा भी नहीं था, 1/4 डब्बा होगा, वो मिठाई का डब्बा ले आया और मैं कहा कि ये हमारे गुरु जी का प्रसाद है. आई डिडंट नो हमारे गुरु जी है, ये हमारे गुरु जी का डिवोटी है. तो मैंने रख लिया, मैंने कहा ठीक है बढ़िया हो गया, प्रसाद मिल गया. उसकी वाइफ पीछे भागी आए कि तुम बड़े अजीब बंदे हो, अपने बैचमेट के घर पहली बार जा रहे हो और डब्बा भी पूरा नहीं है, ये चार टुकड़ी का प्रसाद लेके आ गए हो. तो उसने कहा यार मैं मिठाई नहीं लेके आया हूँ, मैं तो ये प्रसाद लेके आया हूँ, मेरे गुरु जी की ब्लेसिंग है. आज मैं जब सोचती हूँ कि गुरु जी हमको ब्लेस करने के लिए पहले प्रसाद भेजा अपना ताकि हम उस घर में ब्लेस हो जाए, फिर उनको लगा दैट वॉज प्रॉबली नॉट इनफ, फिर वो खुद आए उस घर को ब्लेस किया. एंड एज यू विल बिलीव इट कि 2001 में अंकल बहुत बीमार हो गए, इतने ज्यादा बीमार हो गए कि डॉक्टर गिव अप होप क्या, डॉक्टर सेड गॉन. मुझे मैं आई बॉम्बे में थी, बॉम्बे से मैं आई प्रीवियस नाइट एंड नेक्स्ट मॉर्निंग मैं इनको एडमिट दिखाने गई डॉक्टर के पास, आई थॉट दिखा देंगे ठीक हो जाएंगे. उन्होंने कहा कि एडमिट करना है, एडमिट हो गए एंड डॉक्टर टोल्ड मी कि इनकी लिवर में एक एब्सेस है विच कैन बर्स्ट एंड सेप्टिसीमिया हो गया है. अब सेप्टिसीमिया वुड मीन द एंटायर बॉडी इज फुल ऑफ टॉक्सिंस. खैर गुरु जी ने ऐसा चमत्कार किया कि बॉम्बे हॉस्पिटल, इन्होंने उस डॉक्टर ने अपने नर्सिंग होम में तो एडमिट कर लिया, लेकिन बाद में उनके डॉक्टर कहने लगे कि वी विल नॉट बी एबल टू मैनेज दिस, यू हैव टू गो टू द हॉस्पिटल. गंगाराम हॉस्पिटल के चेयरमैन थे वो जो डॉक्टर जिन्होंने देखा था, तो वो हॉस्पिटल में बताया कि रूम अवेलेबल नहीं है. तो मुझे लगा कि जो चेयरमैन है उनको कह रहे हैं कि रूम अवेलेबल नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूँ. उस समय मेरे एक बॉस होते थे जिसका ना कभी पहले फोन आया ना कभी बाद में फोन आया, आज तक फिर कभी फोन नहीं आया. उस दिन फोन आ गया और कहने लगे कि आशा मैं तुम्हारे घर फोन किया है और तुम्हारी मदर इन लॉ ने बताया कि तुम नर्सिंग होम में हो. मैंने कहा हाँ जी क्यों क्या है, तो मैंने सारा बताया. मैंने बताया डॉक्टर बोलते हैं कि गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ लेकिन रूम तो अवेलेबल नहीं है. तो बोले अपने डिपार्टमेंट में फोन कर वो इमीडिएट रूम दिलवा देंगे. मैंने कहा सर बड़ा एम्बेरसिंग हो जाएगा, चेयरमैन को मना कर रहे हैं और मैं उनके ऊपर प्रेशर डालूं ठीक नहीं है. तो मुझे जवाब देते हैं तेरे लिए एम्बेरसिंग है, मेरे लिए तो कोई एम्बेरसमेंट नहीं ना, मैं ट्राई करता हूँ. तो उन्होंने मेरे ऑफिस हमारे ऑफिस में फोन किया किसी अफसर को और विद इन 1 आवर मुझे फोन आई के रूम नंबर 212 इन गंगाराम हॉस्पिटल इज अवेलेबल, आप पेशेंट को ले आओ. नाउ ये सोचो कौन कर सकता है, जो हॉस्पिटल अपने चेयरमैन को कह रहे हैं कि सर रूम नॉट अवेलेबल, वो घंटे भर में आपको कहते हैं कि रूम इज अवेलेबल, रूम नंबर बता दिया आप आ जाओ. नाउ उनके जूनियर डॉक्टर ने बिकॉज जब तक रूम नहीं मिल रहा था ही मेड अरेंजमेंट्स टू कॉल द यूरोलॉजिस्ट फ्रॉम देयर एंड सी. तो वो देखा उन्होंने. सो व्हेन वी रीच गंगाराम हॉस्पिटल रात को तो डॉक्टर ऑलरेडी न्यू पेशेंट को क्या है क्या करना है दिन यहाँ से देख गया था बिकॉज ही थॉट रूम अवेलेबल नहीं है. सो जब हम गंगाराम हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर वॉज ऑलरेडी रेडी विद ऑल द इक्विपमेंट, रूम वॉज रेडी कि पेशेंट आ रहा है, एवरीथिंग वॉज रेडी. कैन यू बिलीव दैट, नॉर्मली हम जाए पैनिक होता है हॉस्पिटल पहुंचो रूम नहीं अवेलेबल, डॉक्टर नहीं अवेलेबल, उसको भागो कोई डॉक्टर को बुला रहा, कुछ नहीं हुआ, एवरीथिंग वेंट ऑन स्मूथली. हम गए डॉक्टर वॉज वेटिंग. नाउ लुक एट इट, मेरे पास पैसे कितने थे यू आस्क, मेरे पास ओनली 5,000 रुपीज थे. कुछ पैसे मैंने MRI के दे दिए, कुछ वहां दे दिए और बॉम्बे से आते समय मैंने 10,000 निकाल के लाई. आई थॉट कंसल्टेशन है, बाकी मैं दिल्ली जाऊंगी, मेरे पास पैसे हैं दिल्ली में वहां ले लूंगी. बट देयर वाज नो टाइम, रात को मैं पहुंची, अर्ली मॉर्निंग हम आ गए नर्सिंग होम से हॉस्पिटल, सो देयर वाज नो टाइम टू गेट मोर मनी. तो जैसे उन्होंने मैं पेशेंट को हमने भेज दिया रूम नंबर 212, मेरे बेटा और एक हमारे फ्रेंड आए वो ले गए इनको. मैं जब गई रिसेप्शन पे तो मुझे एकदम डर लग गया, ये पेशेंट को वापस कर देंगे, मेरे पास ये तो कहेंगे इतने पैसे 50,000 डिपॉजिट करो, मेरे पास तो 5,000 मैं क्या करूंगी, कैन यू बिलीव। जैसे मैं वो विंडो के पास गई, माई फीट वर ट्रेम्बलिंग, अभी पैसे मांगे वो बेइज्जती होगी। जस्ट देन उसके पास फोन आया, इनसे पैसे मत लेना, इनको सिर्फ एड्रेस ले लो, नाम ले लो और सिग्नेचर ले लो एंड सेंड हर टू रूम नंबर 212। अब ये बताओ, आप सोचो ये कौन कर सकता है, हु कैन डू दिस, इवन टू द एक्सटेंट हु विल नो मेरे पास कितने पैसे हैं। गुरु जी न्यू इस बंदे के पास पैसे नहीं है, तो ये घबराई हुई है। उसी समय उनको फोन आया, मैं साइन किया, मैं भागी ऊपर इनके रूम नंबर 212 में एंड डॉक्टर वाज ऑलरेडी ऑन द जॉब। एनीथिंग आई टेल यू, वहां जब डॉक्टर आके बैठे, घंटा किया, फिर हमको कहा कि अब ये नर्स के हाथ में नहीं देना ये केस, आप ही ने इनको देखना, वॉच करना है। जैसे वो वाटर ऊपर से दे रहे हैं और एक तरफ से वो उनका टॉक्सिन निकाल रहे थे, तो कहा कि जैसे ऊपर से बॉटल खत्म होने लगेगी यू हैव टू कॉल द नर्स, बस उसमें ही काम नर्स का है, बाकी आपने करना है, दिन रात टुमारो एवरीथिंग टिल आई कम अगेन आप ही ने करना है, ठीक है। तो हम कर रहे थे, तो मेरा बेटा कहने लगा कि मम्मी मेरे को तो भूख लग गई है। अब हम इतने घबराए हुए थे कि हमें ये भी ख्याल नहीं रहा कि इतना बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ कोई कैफेटेरिया होगा, कोई चाय कॉफी का इंतजाम होगा। मैंने कहा बेटा मेरे पर्स में वो थोड़ी सी मूंगफली पड़ी है जो उन्होंने प्लेन में दी है, एरोप्लेन में दी है, उसका पैकेट पड़ा है, यू कैन ईट दैट। तो वो उसने मेरे पर्स में से ले लिया, बैठ गया। मैं थोड़ी सी उदास होके दरवाजे तक खड़ी हो गई। जैसे मैं दरवाजे के पास खड़ी हुई, मैंने देखा एक सज्जन आ रहे हैं, एक हाथ में बड़ा सा टिफिन बॉक्स पकड़ा हुआ है और दूसरे हाथ में पिलो और चद्दर लेके आ रहे हैं। एंड पिन ड्रॉप साइलेंस, एकदम रात को 12 बजे 1 बजे समथिंग लाइक दैट, इतना चुपचाप शांत था। और वो मेरे को आवाज, दूर से आवाज लगाते, भाभी जी आपने बताया ही नहीं है, मेरा साहब यहाँ है और बीमार है, इतने हो रहा, मैं पास रहता हूँ, आपने बोलते रहे, आपने बताया नहीं। मैंने कहा भाई साहब मुझे खुद पता नहीं था कि सीरियस है, मुझे ये भी नहीं पता था कि गंगाराम हॉस्पिटल जाना है, अभी हम घंटा भर पहले आए हैं, आई डिडंट नो। एनीवे बोले मैं खाना लेके आया हूँ। सो नाउ आप देखो, आप सोचो कि किसको आपकी, आप सोचोगे कि इवन आपका फादर हो तो वो कहेगा कि आई एम बॉदर्ड अबाउट योर ट्रीटमेंट, मैं आपको डॉक्टर, सही डॉक्टर के पास ले गया, डॉक्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट दे रहे हैं, आई एम ऑल्सो टेकिंग केयर, आपके पास पैसे नहीं है, पैसे बाद में आ जाएंगे, लेकिन आपको खाने के लिए मैंने पूरी अरेंजमेंट कर दिया। सो द बॉय एंड माय सेल्फ बोथ ऑफ अस सैट, और हमने खाना खाया और लेके गए। देन ऑफ कोर्स 8-10 दिन लगे, इट वॉज वेरी बैड, केस बहुत खराब था, एंड दे केप्ट ऑन टेलिंग अस, हर समय असलियत बताते थे, हम चुप करके भी, इतनी इतनी गुरु जी ने हिम्मत दी थी कि वेरी वेरी फर्मली खड़े रहे, जो होगा गुरु जी करेंगे, जो होगा ठीक है, व्हाट कैन यू डू। फिर नेक्स्ट डे मेरी बेटी और मेरा सन इन लॉ डॉक्टर है बॉम्बे से, वो आ गए, तो एक 8-10 दिन वो रहे, वो भी इमरजेंसी में आए थे, छुट्टी उट्टी लेकर नहीं आए थे, तो 8-10 दिन रह के फिर वो भी चले गए, तो करीब 2-3 हफ्ते लगे, एंड देन 3 हफ्ते बाद हम घर आ गए। अब सोचो मैं बॉम्बे हूँ, दिल्ली मेरे पास थोड़े से पैसे थे, करीब 2 लाख कुछ ऐसे थे, तो वो तो खत्म हो जा रहे थे। थर्ड डे उन्होंने पैसे मांगने शुरू करे, उससे पैसे नहीं लिए, बाद में बिल आने शुरू हो गए। अब मुझे डर था मेरे से पैसे खत्म हो रहे हैं, और अंकल इतने सीरियस हैं, मैं उनसे पूछ ही नहीं सकती कि पैसे और पैसे कहाँ से लाएं, क्योंकि बिफोर आई वेंट टू बॉम्बे मैंने अपने FDs वगैरह भी साइन करके दे दिए थे इनको, क्योंकि गुरु जी ने कहा था कि तुम गुड़गांव में कोई जगह देखो, यू शिफ्ट टू गुड़गांव। तो मैंने, ये लोग देख रहे थे मेरे बेटा और अंकल कि गुड़गांव में कोई जगह मिले, तो मैंने कहा हाँ ये पैसे ले लो, जो भी होता है शॉर्टलिस्ट करके यू बाय द प्लॉट। तो अब मेरे पास एक्सेप्ट जो बैंक में था वो पैसे ही नहीं थे, बट मनी स्टार्ट कमिंग फ्रॉम ऑल, जो मेरे को जहां जहां से मेरे आने थे अपने आप आने लगे, कहीं से 80,000 आ रहा है, कहीं से 50,000 आ रहा है, मनी स्टार्ट कमिंग एंड आई कुड मैनेज। एंड लास्ट जब उनको डिस्चार्ज करना था, अब मेरे को चिंता हो गई थी कि मेरे पैसे खत्म हो रहे हैं, मेरी मदर आ गई पुणे से, मेरा भाई आ गया, वो बेचारे पैसे लेके आए, बोलने लगे कि इतने पैसे अकेली कहाँ से लाए गए। तो लेकिन मेरे मुंह से एक ही ना निकला, नहीं मैं कहा मम्मी मेरे पास पैसे हैं, मेरा भाई बोला देख मेरी दीदी मैं लेके आया हूँ, मैंने कहा नहीं बेटा मेरे को चाहिए ही नहीं, आई हैव इनफ, हो जाएगा मेरा। बट द फैक्ट वॉज आई हैड हार्डली 10,000 रुपीज लेफ्ट। बट गुरु जी ने ऐसी कृपा की कि जब फाइनल डिस्चार्ज हुआ करीब 7,000 में निपट गया, बिकॉज कुछ रिफंड थे, कुछ दवाइयां वापस करनी वट एवर, कर करा के 7,000 में हो गया और इज्जत बच गई। गुरु जी का लाख लाख शुक्राना। वो इतनी मुश्किल घड़ी थी, इतना मुश्किल समय था कि मैं अभी भी कभी याद करती हूँ तो मेरे दिमाग हिल जाता है। पर गुरु जी को देखो, अगर हम मानते, अब मैं सोचती हूँ सच कहते हैं मांगो नहीं मानो, अभी हम मांगते तो मैं क्या मांगती, वॉट वुड आई हैव आस्क्ड, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये आफत आने वाली है। गुरु जी का पता था, गुरु जी ने पहले प्रसाद भेजा उस घर में, गुरु जी ने मुझे ये तो नहीं कहा कि ये घर तेरे लिए अच्छा नहीं है, गुरु जी ने पहले प्रसाद भेजा, वे खुद आए ब्लेस करने के लिए, और फिर एट एवरी स्टेप ही वाज विद मी, एट एवरी स्टेप ही वाज विद मी। सो इस आप देखो गुरु जी ने कितने वर्ड्स हैं, किस वर्ड से मैं शुक्राना कर सकती हूँ। एक तो अंकल जी को लाइफ दी, और फिर ड्यूरिंग द टाइम दैट वी वर वेरी सिक, हर समय मेरे साथ है, और मुझे किसी समय कमजोर नहीं होने दिया, किसी समय कोई मुश्किल नहीं आने दी कि आप क्या करोगे। इमीडिएटली रास्ता खुल जाता था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 6 महीने अंकल जी मेरे बॉम्बे चले गए, अंकल जी मेरे से बॉम्बे चले गए, मेरी मदर भी वहां आ गई, तो माई हस्बैंड कुड बी लुक्ड आफ्टर इन बॉम्बे एंड आई जॉइन माई वर्क अगेन। करीब ठीक रहे अंकल जी फिर वहां वापस चले गए, PhD करी, PhD में बहुत अच्छा किया, ही वाज वेरी ही डिड वेरी वेल। फिर वहां आके 2015 में, ये पहले जो इंसिडेंस है 2001 का है, फिर 2015 में अंकल जी को हार्ट प्रॉब्लम हो गई, और वो भी ऐसे हुई कि देयर वाज अ पैनिक। हम लोग सोच रहे थे कि कोई किया अस्थमा बट इन कंट्रोल, तो हमने सोचा कि कोई अस्थमा का अटैक हो गया है इसलिए ही इज नॉट एबल टू ब्रीथ, बट इट वॉज रियली हार्ट प्रॉब्लम। एंड वो भी क्या हुआ, हम लोग किसी सत्संग पे गए, गुरु जी के सत्संग पे गए हुए थे 26 जनवरी को, एंड होल डे अंकल ने ड्राइव किया वहां, बड़ा अच्छा सत्संग था, वी हैड अ वेरी गुड डे। तो शाम को, दिन भर लग गया था, शाम को आए तो अंकल थोड़े थक गए तो सो गए। नेक्स्ट डे अपने वसंत कुंज के पास ही, हमारे घर के नॉट टू फार, हार्डली हाफ किलोमीटर अवे, एक और सत्संग था बड़ा अच्छा, तो मैंने कहा मैं तो जाऊंगी उस सत्संग में, हमारे लाइक अ फैमिली सत्संग। तो कहने लगे तू चली जा, मैं थका हूं, आज टेक सम रेस्ट। मैंने कहा ठीक है आप रेस्ट कर लो। वहां मैं गई तो नॉर्मली सत्संग में तो कोई बात होती नहीं, लेकिन उस दिन क्या हुआ, जिस अंकल ने सत्संग करना था आफ्टर द शब्द, वो थोड़े ही वाज नॉट वेरी वेल, तो उन्होंने कहा कि गिव मी 5-10 मिनट्स बिफोर आई स्टार्ट द सत्संग। सो उस 10 मिनट्स में दैट अंकल वाज मिस्टर एमपी सिंह अंकल, चंडीगढ़ वाले। तो वो अंकल को मैं जरा आई वॉन्टेड टू हैव अ वर्ड विद हिम, मैं उनके पास चले गई। तो उस दौरान फिर जिनके घर सत्संग था होस्ट, वो अपने किसी डॉक्टर की बात करने लगे कि ये डॉक्टर बड़े अच्छे हैं सो एंड सो। तो मैंने कहा अंकल कौन से डॉक्टर है, मुझे एड्रेस बता दो, नाम है, फोन नंबर बता दो, क्योंकि हम तो इंडिया गेट रहे हैं और वहां के डॉक्टर में पहचानती हूँ, अब हम शिफ्ट करके अपने मकान में आ गए हैं, अपने सरकारी मकान तो दे दिया है, आई डोंट नो एनी डॉक्टर। तो उनसे मैंने टेलीफोन नंबर लिया और मैंने सेव किया, सेव करके मैंने अपनी फोन अकॉर्डिंग टू मी बंद कर दी थी कि सत्संग वापस शुरू होने वाला था। आफ्टर 10 मिनट्स मेरी फोन रिंग करती है, आई वॉज वेरी एम्बेरस कि यहाँ सत्संग चल रहा है, मेरी फोन बज गई। मैं इमीडिएटली किचन में चली गई और मैंने कहा, वो डॉक्टर बोले आपने फोन किया था, तो आई वॉज वेरी शिपिशली मैंने कहा मैंने फोन तो नहीं किया था, मैंने आपका नंबर मुझे किसी ने दिया, मैंने नंबर सेव किया, सेव करते करते शायद लग गया होगा, इट्स अ बाय मिस्टेक, मैंने सोचा मैं कल आपसे अपॉइंटमेंट ले लूंगी, आज तो छुट्टी है, तो आई छुट्टी दिन आई डिडंट वांट टू डिस्टर्ब यू। तो उनका जवाब सुनो अभी, ही डजंट नो मी वन बिट, आई हैव नेवर सीन हिम, आई हैव नेवर मेट हिम, ही टेल्स मी पेशेंट को जरूरत आज है, अपॉइंटमेंट आप कर लोगे। तो फिर मैंने कहा डॉक्टर साहब वो तो बात ठीक है, लेकिन मैं किसी के घर सत्संग में आई हुई हूँ, मुझे तो घर जाने में टाइम लगेगा, और फिर मैं उन अंकल से पूछूंगी, वो आएंगे आपके पास आने में घंटा लग जाएगा हमें, उन्होंने कहा ठीक है आ जाओ घंटे में आ जाओ. बट मैंने कहा 5:30 बोले 6 मुझे कहीं जाना है सो कम बिफोर 6. आई सेड आई विल ट्राई टू. मैंने फटाफट सब छोड़ा और आई टुक एन ऑटो रिक्शा एंड मैं घर आई और मैंने अंकल से कहा ऐसे ऐसे बात है वुड यू लाइक टू गो. हाँ तो उठने लगे कि मैं वॉश करके चेंज करूं एंड वी विल गो टू द डॉक्टर. ही फाउंड कि उठ नहीं पा रहे बैठ ही नहीं रहे बिस्तर में जैसे लेटे ही कुन गेट अप ही वाज सो बैड. फिर वो बड़ी फिर मुझे कहने में तो उठ नहीं पा रहा. अच्छा फिर मैंने कहा अच्छा ट्राई करो मैं डॉक्टर को फोन करके बोल देती हूँ आप नहीं आ पा रहे नहीं नहीं फोन मत कर लेट मी ट्राई ऐसे करते रहे हम एंड 10 मिनट निकल गए. तो फिर अल्टीमेटली इन्होंने बड़ी हिम्मत करके थोड़ा थोड़ा करके चेंज किया उठे बाथरूम गए चेंज किया और हम कार तक नीचे गए. कार जस्ट नीचे हमारे घर के नीचे ऑन द फर्स्ट फ्लोर नीचे गए कार में बैठे. फिर बोले मेरे से कार स्टार्ट ही नहीं हो रही मेरे हाथ ही नहीं चल रहे. फिर हमने बेटे को फोन किया कि तुम आ जाओ ये पापा इज नॉट वेल और डॉक्टर पास जाना है. तो जब तक वो आए 6 बज चुके थे. तो फिर हमने कहा कि अब तो हमें जा सकते डॉक्टर साहब ने कहीं जाना है. तो मेरी डॉटर इन लॉ कहने लगी मम्मी एक बार फोन तो कर लो. मैंने कहा नहीं बेटा वो कहीं पार्टी है तब भी करावे वी कांट और कहीं इम्पोर्टेंट मीटिंग पे गए तो बेबी आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब. स्पेसिफिकली सेड मैं 6 बजे कहीं जाना है एंड आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब. तो देन 10-15 मिनट के बाद उसने क्या किया कि मैं एक SMS दे देती हूँ कि डॉक्टर साहब जब आप आओ हमें फोन कर देना वी विल कम. तो उसने SMS कर दिया एंड करीब आधे घंटे बाद उनका फोन आ गया कि मैं घर आ गया हूँ आप आ सकते हो. तो जैसे हम फटाफट भागे मेरे साथ गाड़ी ड्राइव की एंड फॉर्चुनेटली वो डॉक्टर का क्लिनिक या घर वो दोनों ग्राउंड फ्लोर पे था तो आराम से वी कुड गो एंड सी हिम. तो पहले उन्होंने मुझे डांटा रिकॉर्ड नहीं लाए कुछ नहीं लाए. मैंने कहा आई थॉट सिंपल आप देख लोगे क्या प्रॉब्लम है हम तो सोच रहे हैं अस्थमा का अटैक है क्या है. एनीवे उन्होंने कहा आई वुड सजेस्ट एडमिशन. मैंने कहा कहाँ बोले. मैंने कहा जहाँ बोलो. उनके फोर्टिस हॉस्पिटल आपके घर के पास था वीकेंड. ओके ठीक है. तो हाँ उन्होंने फोन किया डॉक्टर को फोर्टिस हॉस्पिटल में और बोले चले जाओ आई हैव स्पोकन टू हिम ही विल टेक यू. तो हम चले गए करीब रात को आई थिंक 9 बज गए होंगे. वहां जाके एडमिट हुए. फिर मैं घर आई रिकॉर्ड वगैरह ले गई. रात को देर हो गई थी एडमिटेड हिम इन दी अस्थमा लंग्स पोजिशन. रात को ही कैप्टन कंफर्टेबल. मॉर्निंग उनको लगा कि लंग्स तो ठीक लग रही है. देन दे सेड लेट अस ट्राई अ हार्ट प्रॉब्लम. तो जब जैसे करी उन्होंने एंजियोग्राफी करी दे फाउंड आर्टरीज ब्लॉक्ड है. फिर इको वगैरह और टेस्ट किए दे वर श्योर इट्स अ हार्ट एंड इट्स नॉट अ लंग्स. अब करना था बाईपास करना है कि क्या करना है. सो व्हाट आई एम टेलिंग यू इज इवन दो इट वाज हार्ट ट्रबल बाईपास होना था बट देयर वाज नो पैनिक. द वे धीरे धीरे स्मूथली होता रहा. हम सोचते रहे अच्छा जाएंगे फिर डॉक्टर पास गए एडमिट. ऑल दिस हैपेंड एज इफ ठीक है बीमार है डॉक्टर को दिखाना है ऑल दिस एंड देन ऑफ कोर्स फिर डॉक्टर ने कहा कि इट हैपेंड कि डॉक्टर वाज सो गुड जिन्होंने एंजियोग्राफी किया मुझे बुलाया बताया दिखाया कि ये देखो तीन 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 बड़ी बड़ी आर्टरी जो ब्लॉक्ड है तो करना पड़ेगा. ठीक है 2-3 दिन हॉस्पिटल रहे फिर हमने डिसाइड किया बॉम्बे करेंगे. फिर हमने बॉम्बे किया बॉम्बे ले गए. बॉम्बे मेरे सन इन लॉ डॉक्टर है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इन टाटा मेमोरियल. उन्होंने कहा कि मैं वहां से सर्जन बड़ा अच्छा इंटरनेशनल नोन सर्जन है उनसे बात करके अपॉइंटमेंट दे देता हूँ. वहां फिर हमने अपॉइंटमेंट ली लंग स्पेशलिस्ट से भी ले ली. लंग स्पेशलिस्ट ने पहले ही व्हाइल वी वर स्टिल इन दिल्ली सारी अपॉइंटमेंट देनी शुरू कर दी. अब देखो जिस उनकी अपॉइंटमेंट है सारी अरेंजमेंट हो गई है टिकट परचेज एवरीथिंग वाज डन और मुझे स्वाइन फ्लू हो गया. कैन यू बिलीव इट आई वाज डाउन विद स्वाइन फ्लू. अब मैं मुझे खांसी आ रही है बार बार और मैं तो जा नहीं रही डॉक्टर के पास कि अगर कुछ हुआ तो ये तो डेट 2-4 दिन में मुझे बॉम्बे जाना है. तो मैंने अपने सन इन लॉ ने फोन किया कहने मम्मी आप तो खांस रहे हो. मैंने कहा हाँ दिखाया. मैंने कहा नहीं क्यों. मैंने कहा अगर कुछ हुआ तो फिर एडमिट करना होगा तो जरूर करेंगे लेट देम एडमिट. मैंने कहा व्हाट अबाउट दी सर्जरी की डेट. आई विल मैनेज दैट तुम वी गो टू द डॉक्टर फर्स्ट. तो उन्होंने वही बात हुई, उन्होंने एडमिट कर लिया. तो 7 days आई वॉज इन दी ICU. सो देन बट नाउ स्वाइन फ्लू था, ICU में थी, बट बिलीव मी आई सफर्ड नथिंग. मुझे लगा मेरे कुछ भी नहीं है. गुरुजी कैप्ट मी सो कंफर्टेबल. मैं गुरुजी का एक स्वरूप लेके अपने बेड के साथ जो टेबल होती है वहीं रखा. एंड आई टोल्ड डॉक्टर साहब यू वोंट माइंड दिस, ही इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ मी, यू कैन मेक मी कंफर्टेबल बट इट इज ही इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ मी, सो प्लीज डोंट माइंड. मैंने कहा ठीक है, आई डोंट माइंड, मुझे क्या है. तो 7 दिन के बाद मैं घर आ गई एंड विद इन 2-3 days अभी माई लेग्स वर शेकिंग, आई वाज स्टिल फीलिंग वेरी वीक, बट वी लेफ्ट फॉर बॉम्बे. एंड बॉम्बे डॉक्टर ने बड़े टेस्ट वगैरह जो भी करवाने करवाए टेस्ट एंड एडमिटेड इनटू द हॉस्पिटल एंड एवरीथिंग वाज मैनेज्ड विद इन द फाइनेंसेस. वो सबसे इतने कॉस्टली डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि जो हॉस्पिटल को आपने देने हैं वो तो देने हैं, लेकिन जो मेरी अपनी फीस है वो अलग है एंड दैट इज लिंक्ड टू द रूम इन विच यू आर स्टेइंग इन द हॉस्पिटल. सो हमने कहा अगर हमने बहुत छोटा रूम लिया तो फिर मेरे अंकल जो है ही विल फील वेरी हर्ट कि वेल इन सर्विस वी वर स्टेइंग इन सूट्स एंड वी वर इन वेरी हाई पोजीशन और अब जस्ट बिकॉज आई एम रिटायर्ड यू पुट मी इन सच ए स्मॉल रूम. तो उनको तो बड़ा साइकोलॉजिकली ही मे फील वेरी हर्ट. सो व्हाट टू डू यू नो व्हाट द डॉक्टर सेड, ही सेड हम आपस में बात कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं बात, नॉट इवन इनसाइड इज इन चेंबर. तो वो हमें कहते हैं कि मैडम यू नीड नॉट वरी अबाउट विच रूम यू आर टेकिंग, यू टेक द मिनिमम एक सिंपल एयर कंडीशन रूम ले लो और मेरी फीस उसके लिए 10 lakh होगी. इफ यू टेक अ हायर देन 15 lakh, यू टेक अ हायर देन 20 lakh, देन 40 lakh, दिस विल गो ऑन. हॉस्पिटल की जो होगी दैट इज डिफरेंट, मेरी होगी. तो फिर वो कहते हैं कि मैं तो उनको डायरेक्टली ICU में रखूंगा. So you take the minimum room, जिसमें 10 lakh मेरी फीस होगी. You don't need to take a suit, you need to take, because मैंने फिर भी कहा, I told my daughter, मेरे daughter and son-in-law were in Bombay, उनके arrangements कर रहे थे. मैंने कहा मेरे पापा को पता लगा यार बड़ी मुश्किल हो गई, हम तो बड़े मुश्किल से फंस गए. तो उसने पता नहीं कैसे उसने हमारी बात को भांप लिया, उसके सामने हमने मुंह नहीं खोला, but he said, don't worry, आप एक मिनट के लिए उस कमरे में नहीं जाओगे, हम एडमिट करेंगे सारा इनटू ICU एंड देन टू द ऑपरेशन थिएटर, बैक टू ICU एंड देन फ्रॉम ICU आई विल डिस्चार्ज यू, अपने रूम में जाओगे ही नहीं. सो दैट इज हाउ गुरुजी की कृपा रही. ऐसा मैंने कभी सुना नहीं है, सारी उम्र रही है हॉस्पिटल, कई बार गए हैं, कई बार दो लोगों को देखा, बट ऐसे कभी मैंने सुना नहीं है कि डॉक्टर कहता है कि ICU में से एडमिट करेंगे और ICU से ही डिस्चार्ज करेंगे. डोंट वरी अबाउट द रूम. सो वी मैनेज विद इन जो हमारी बजट, जो हमारा ख्याल था बजट, तो खैर क्या होनी थी, हमने सोचा जो खर्चा होगा होगा. अल्टीमेटली यू आर वर्किंग ओनली फॉर योर लाइफ टाइम, हमारी कोई लग्जरी तो है नहीं, तो ये जो जरूरी है वो तो है. तो बट गुरुजी की कृपा इतनी रही कि गुरुजी ने कहा कि बस जितना आराम से पे कर सकते हैं उसने में सारा हो गया. सो उसमें सारा हो गया. आफ्टर अबाउट 8 to 10 days उन्होंने हमें डिस्चार्ज किया फ्रॉम द ICU टू दी टू आर होम. नो रूम, रूम देखा तक नहीं, रूम नंबर तक नहीं पता, दैट इज इट. एंड इनको तो अंकल को तो ट्रीटमेंट बढ़िया से बढ़िया मिली, दैट डॉक्टर उन लोगों को अपॉइंटमेंट नहीं मिलती. और हम लोग जब उन्होंने हमें सब ये बताया, उसके बाद हम इनकी PA के पास गए, सेक्रेटरी के पास गए. एक्सक्यूज मी. वी वर वर्किंग आउट दी अरेंजमेंट्स फॉर पेमेंट वगैरह. तो हमें अंदर से आवाज, उनके डॉक्टर के चेंबर से आवाज आ रही थी. नेक्स्ट पेशेंट जो गए थे उन्होंने शायद कहा कि डॉक्टर साहब कैन यू नॉट रिड्यूस दी फीस. तो वो कह रहे थे, डॉक्टर साहब उनको कह रहे थे कि आई नो आई एम वेरी कॉस्टली, तो यू गो एंड लुक सम अदर डॉक्टर, बहुत डॉक्टर हैं बॉम्बे में जो हार्ट सर्जरी करते हैं. मैं आई नो आई एम कॉस्टली, यू डोंट नेसेसरीली, कोई जरूरी नहीं आप मेरे से ही करो, आप किसी और से करवा लो. और उनको ये कहा और हमको अपने आप कहा कि तुम डोंट वरी, मैं ICU से करूंगा, मिनिमम जो होता है दस लाख मेरे मिनिमम है, मैं दस आई विल सेम केयर मैं करूंगा, जैसे आप 40 वाले 40 लाख वाले देते हैं, दस मैं आपको सेम केयर करूंगा. सो दैट इज गुरुजी कृपा, नोबडी एल्स विल बी एबल टू डू. ना हमारी पहचान, ना हमको पहले कभी मिले थे, ना हम कभी बाद में उनको मेरे डॉक्टर को. दैट इज दी कृपा ऑफ गुरुजी. कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं, कितना ख्याल रखते हैं हमारे लिए, इसका कोई अंत नहीं है. आई डोंट फाइंड एनी वर्ड्स, मेरे को कोई डिक्शनरी लफ्ज नहीं मिला जिससे मैं बता सकूं कि गुरुजी कितनी कितना कितना ख्याल करते हैं हमारे लोगों का. हम तो उनके कुछ 0% भी कुछ नहीं कर पाते जितना वो हमारा ख्याल करते हैं. दैट इज वाई ऑल द मोर आई फील कि हमारा जन्मों जन्मों का कनेक्शन है. और बार बार मैं यही सोचती हूँ कि गुरुजी अपने चरणों में रखना, आपने उसमें अपने स्वरूप पे लिखा होल लाइफ, मुझे होल लाइफ नहीं, मुझे जन्मों जन्मों तक एवरी टाइम आई वॉन्ट टू बी विद यू ओनली. अपने चरणों में रखो, अपने चरणों से दूर कभी भी ना करना. आप ही मुझे ले जाना, जहां ले जाना, जो करना है वही आप ही करिए. आई एम नॉट विलिंग टू बी विदाउट यू नाउ फॉर एनी लाइफ व्हाट्सएवर. सो बच्चों का भी मेरे बाद बार बार मेरे मन में आता था कि गुरु जी बेटा मेरा बहुत डिवोटेड है, क्योंकि मेरे साथ दिल्ली में रहा, पर मेरी बेटी बॉम्बे में थी. तो मुझे बार बार कभी कभी मन में आता था दिल्ली में बहुत सर्दी है, हम पुणे में सेटल हो जाएंगे, बॉम्बे में सेटल हो जाएंगे. और तब बॉम्बे मंदिर नहीं होता था, और मेरे सन लॉ और बेटी बोले मम्मी हाउ कैन यू लीव दिल्ली, गुरु जी दिल्ली में है, आप तो कैसे आ सकते हो बॉम्बे, आप कैसे आ सकते हो पुणे. दे ऑल न्यू कि गुरु जी के बिना हमारा एक दिन मुश्किल है. और उन दिनों तो हम रोज गुरु जी के पास जाते थे, तो उनको लगता था कि गुरु जी के बिना तो इनका मुश्किल है, कैसे सोच रहे हैं कि वी कैन बी लीव दिल्ली. इतना हमारा गुरु जी का कनेक्शन था. और जब गुरु जी गए तो हम सुन से रह गए, टिल वी गॉट एविडेंस दैट गुरु जी इज विद अस ऑल द टाइम. और अब तो गुरु जी हर बार हर दिन एविडेंस होता है कि गुरु जी हमारे साथ है. 50 बार दिन में वो हमें बचाते हैं, कभी हम गलती कर बैठते हैं उसमें बचाते हैं, कभी गिरते गिरते बचाते हैं, कभी कुछ कभी कोई अड़चन आ जाती है उसमें बचा लेते हैं, कभी कोई मुश्किल आ जाती है जैसे हाय कैसे होगा, इमीडिएटली कुछ कुछ हो जाता है कि गुरु जी करवा देते हैं एंड वी आर एबल टू सेव इट. इतनी बार गुरु जी ने बचाया, इतनी बार रोज, नॉट इतनी बार मीन रोज, ऑलमोस्ट एवरी डे. मैं तो गिरने से 10 बार गुरु जी बचाते हैं, गिरते गिरते बच जाती हूँ. जैसे शुक्राना गुरु जी, कुछ इस खाना बना जल्दी, शुक्राना गुरु जी ठीक हो गया, पानी ज्यादा डल गया वो फट बढ़िया बन गया, शुक्राना गुरु जी आपने सिखाया. सो हमारी तो नस नस में, खून में, बूंद बूंद में गुरु जी बसे हुए हैं. और यही रहे कि गुरु जी हमारे पास, गुरु जी अपने पास से रखना, कभी फॉर ए सेकेंड हमको अपने दूर मत करना, और हमें गाइड करते रहना. कहीं हम ऐसा कोई कर्म ना करें जिससे आपको कोई तकलीफ हो, जिससे आपको कोई नाराजगी हो कि इन्होंने ऐसे क्यों किया, नहीं करना चाहिए था. नादान है, गलतियां करते हैं तब भी करते थे. गुरु जी ने कहा था गुड़गांव ले लो, नहीं गए, पता था. कई बार ऐसे हुआ गुरु जी ने किसी को बताया कि तेरे पर्स में 326 रुपए है सन, गिन के आई कहीं, हाँ जी गुरु जी है सन. किसी ने हम लोग जो भोग लगाते थे तो सब कुछ कोई ड्राई फ्रूट का लगा रहा है अगर कुछ, तो गुरु जी का जैसे मैंने ड्राई फ्रूट नहीं किया आंटी, रोज पिस्ता खिला देने नहीं है, तो एक फुल रख जाकर बस. किसी को कहते थे पानी को रखते ही नहीं है, सारा मेरे प्यास लगे पानी को रखते नहीं, तुम लोग सारे अपने अपने रखते हो. तो गुरु जी इतना एविडेंस देते थे कि आई नो एवरीथिंग, इवन इन योर हाउस जो होता है मुझे सब पता है. फिर भी हम लोग नादान है. मैंने सोचा कि हम कैसे गुरु जी को बताएं, हमारे पास तो पैसे नहीं है कि हम जाके गुड़गांव में जगह ले. वो कहते रहे गुड़गांव जगह ले ले, गुड़गांव ले ले. मैं तो किसी के सामने उधर तो हिम्मत नहीं होती थी बोलने के, गुरु जी पैसे नहीं कहाँ से लाए, नहीं लिए. और गुरु जी को बोला भी नहीं कि नहीं, अगर कहते तो गुरु जी कहते ना कि तू ले ले, मैं आप पे तेरे ना लगा, लेकिन हम तो बोलते ही नहीं थे, कुछ बोलते ही नहीं थे. तो कई बार नहीं माना, कहना ठीक है कॉन्सिक्वेंस हमने सफर किया जो भी है, लेकिन गुरुजी को शायद अपने ही रीजन था. उन्होंने कभी अपना एहसास नहीं किया कि मैं सिर्फ एक महापुरुष नहीं हूँ, मैं एक महाशिव हूँ, मैं तुम्हारा भगवान हूँ, मैं तुम्हारा मालिक हूँ, मैं तुम्हारा सब देख रहा हूँ, मैं तुम्हें सब कंफर्ट दूंगा. हमें उनकी मर्जी थी, उनका कोई कारण था, उन्होंने ये सब हमें एहसास नहीं होने दिया. हमने सिर्फ ये सोचा अभी जो संगत आती है दे नो हिज गॉड दे वर्शिप लाइक दैट. हम तो उनको अपना भाई समझते रहे, अपने पापा समझते रहे, अपने फ्रेंड समझते रहे. कभी मानते थे बात, कभी नहीं मानते थे. हम खुश रहते थे, इतना था कि उनके साथ खुश हैं, हमेशा खुश रहते थे. किसी चीज की तकलीफ नहीं थी, किसी चीज की चिंता नहीं थी. लेकिन ये नहीं सोचा था ये भगवान है, इन्होंने जैसे कहा वैसे करना ही करना है. तेरा अदर संगत जो करती थी बिल्कुल मानती थी, पर एक मैं तो नालायक थी, कभी मानती थी कभी नहीं. जैसे उन्होंने कहा गुड़गांव में ले लो, मैंने कहा ही नहीं उनको कि गुरुजी पैसे नहीं, मेरे पास हिम्मत नहीं होती थी कहने के लिए कि गुरुजी मैं कहाँ से पैसे लाऊं. यहाँ ये वाला दीदी का फ्लैट है, ये लॉट्स में आ गया है, ले लिया बस इतना. लेकिन इतनी हिम्मत नहीं होती थी ना, अकल थी कि गुरुजी सब अगर लोगों के पर्स में जानते हैं कितने पैसे, तो उनको मेरे भी तो पता है कितने पैसे हैं. लेकिन अकल नहीं थी, ठीक है, नहीं मानी, नहीं सुना. तो गलतियां तो करी हुई है, लेकिन गुरु जी कभी कहते हैं कि गुरु जी प्लीज अभी कोई गलती ना करें, आपका आदेश माने, जैसे आपको वैसे ही करें. एक और गुरु जी बोलते थे कि निंदा चुगली नहीं करनी, किसी की निंदा नहीं करनी, जो करना है और किसी की बुराई नहीं करनी, निंदा भी नहीं करनी, और किसी की किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना. आप उनको हेल्प कर सको तो करो, अगर हेल्प नहीं कर सकते तो उनका बुरा बिल्कुल ना करो. दैट वो शुरू से आदत थी और पक्की हो गई कि कभी वीकर मोमेंट्स में भी आप किसी का नुकसान बिल्कुल नहीं करो. यू कांट हेल्प, डोंट हेल्प. इफ यू कैन हेल्प, वेरी गुड, बहुत अच्छा. आई सो वंडर, गुरु जी बोलते संगत ले आओ, आई सो वंडर कैसे संगत ले आए. लेकिन वो ठीक कहते थे कि वो तेरे को तुम्हें ब्लेस करेगी, उनको भी ब्लेसिंग मिले, दैट इज वन वे ऑफ हेल्पिंग पीपल. तो बस उतना. आई वॉज अ वेरी रिजर्व पर्सन टिल गुरु जी केम इन टू माई लाइफ. आई वॉज अ वेरी रिजर्व पर्सन, मैं ज्यादा किसी से बातचीत करती नहीं थी. संगत में भी हम ज्यादा बात करते ही नहीं थे. आते थे, जय गुरु जी किया, गुरु जी के चरण छुए और जाके बैठ गए, शब्द सुने, चाय प्रसाद लिया. गुरु जी मिठाइयाँ खूब खिलाते थे, इतना खिलाते थे कि कभी मैंने खाए नहीं इतनी, ना मिठाइयाँ इतनी कभी खाई, ना समोसे इतने खाए जितना गुरु जी खिलाते थे. खिला खिला के हमें बना दिया कि ये भी खा सकते हो, ये भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो. कर करा के अपना खा पी के शब्द सुन के शांति से रह के वो दो ढाई घंटे तीन घंटे जितनी बजे हम रहते थे उनके पास, मजे करके आते थे और खुशी खुशी आते थे. और जो किसी का ये मन में हो गया था कि जो किसी का भला हो सके करो, बाकी किसी का ना निंदा करो ना किसी का नुकसान करो. और एक और गुरु जी ने खास मुझे कहा कि जगह जगह नहीं भटकना, एक एक का लट फड़ो, उनके साथ ही रहो. मैं बद्रीनाथ केदारनाथ गई, कई गुरुओं के पास गई थी, कई जगह जगह गई थी. तो मुझे कहते थे, वैष्णो देवी जाते कहते जगह जगह मत जाओ, एक जगह रहो. और वो मैंने उनका पकड़ लिया है लट. और मुझे एहसास हो गया कि मेरे मास्टर, मेरे मालिक, मेरे भगवान यही है, और मेरा पूरे यूनिवर्स में कोई नहीं है, बिल्कुल कोई नहीं, नॉट इवन फॉर अ सिंगल मोमेंट आई कैन से कि मेरा और कोई है. सारे बाकी कोई ना कोई मतलब कहो, रीजन कहो, जो मर्जी कहो, उसके लिए होते हैं. बट इट इज वन गुरु जी, इज वन स्पिरिट, वन सोल, वन गॉड, हु without any selfish motive, without any personal reason, he is with you all the time, looking after you, looking after your comforts, looking after your welfare. और आपको सीधे रास्ते पे ला के रखा है ताकि आगे भी आप अच्छे कर्म करो. कहीं आप गलत करना चाहो, करने गलती से भी करो, तो वो आपको realize करवा देते हैं. So that is one thing for which we can never repay, we can never use words enough to thank Guruji. Guruji kripa, Guruji mahan hai. I don't know, mere paas koi lafz hai nahi jiske main Guruji ko, koi ant nahi hai, agam agochar hai, koi word nahi hai ki Guruji kis tarah describe kiya jaye, kis tarah unka shukrana kiya jaye. Guruji hum bahut chote hai, to jitna humse, हमारी जितनी लैंग्वेज है, जितनी हमारी कैपेसिटी है, उतना ही हम कर सकते हैं. आई नो यू नो दैट ऑल्सो, तो आपको पता ही है. तो आप एक्सेप्ट करो हमारा शुक्राना, आप एक्सेप्ट करो हमारे प्रणाम, आप एक्सेप्ट करो हमारे, मैं आपके चरण छूती हूँ, प्रणाम करती हूँ, और आप हमारे आप हमें अपने चरणों पे रखी रखो, आपका चरण और हमारा माथा ऐसे ही रहे. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना. संगत जी, मैं अभी यहाँ विराम लूंगी. आई थिंक व्हाट आई हैव सेड इज इनफ फॉर द टुडे. सत्संग तो बहुत हो जाते हैं, लेकिन आई थिंक आई मस्ट स्टॉप नाउ, इट्स गेटिंग लेट इन द नाइट. शुक्राना गुरु जी.